और पुण्यात्मा कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके नीचे सतर की, वो है तो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, वो है तो यूजलेस, फिर भी उनका स्वभाव, उनकी कैसी स्थिति होती है, इसका आगे उत्तर दिया है दूसरे में भगवान श्री भगवान वाच पर सत्रहवें का दो अध्याय नंबर 17 का ये दो। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, यानी शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उनके अपने स्वभाव से उत्पन्न उनकी पूजाएं हैं, तो वह श्रद्धा सात्विक और राजस, ये भी तामसी आदि तीन प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। तीन में कहा कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, वह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला हो स्वयं भी वह वैसा ही है। अब क्या देखो कितना क्लियर कर दिया सत्र में मैं कि चौथे श्लोक में कि है ये सारे डले ढो रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर्म मान आचरण तो कर रहे हैं, चौथे में तो सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, जो अच्छी आत्मा है वह तो देवताओं तो की पूजा करते हैं, और जो राजस पुरुष हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, जंतर मंतर करके अपना धनी बनना चाहते हैं, और अन्य तामस मनुष्य जो प्रेत और तमोगुण भूत गुणों की पूजा करते हैं। वो इसलिए गीता जी को अभी तक समाज ने सिरोधार्य कहा और वास्तव में ये सत्य है, लेकिन इसको समझ नहीं सके थे। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं वो तो है व्यर्थ, लेकिन वो कौन से किस प्रकार के किस स्वभाव के व्यक्ति कौन कौन सी पूजा करते हैं, कहते हैं जो अच्छी आत्मा है वो देवता, जो अच्छी पुण्य आत्मा है सात्विक स्वभाव के हैं वो तो देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आदि ये देवताएं पूजा करते हैं, और दूसरे जो राजस टाइप के हैं यानी अहंकारी हैं और कुछ अपने आप में अभिमानी है वो करते हैं ये यक्ष भैरव भूत पितालों की भैरव आदि की, और जो तीसरे प्रकार के हैं वो भूत पितरों के जंतर मंत्र करके ये जाड़े झपटे लाने लग जाते हैं, भूत काटने लग जाते हैं, ये हैं सारे यूजलेस। इति सिद्धम हो गया कि जो अच्छी आत्माएं हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन है वो शास्त्र विरुद्ध। अब फिर आते हैं पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 से आगे चलते हैं। अब ऐसे इस पवित्र सदग्रंथ का एक तत्व, एक सार निकलेगा, और इस सार के बाद हम अपनी भक्ति को सुचारू कर पाएंगे। अब इसमें क्या कहा कि अर्जुन, मेरी पूजा भी यानी ब्रह्म साधना भी चार प्रकार के करते हैं, इन तीनों गुणों की, अन्य देवताओं की पूजा, तीनों गुणों की पूजा, ये तो व्यर्थ है ही है, ये तो क्लियर कंसेप्ट हो गया, ये तो करनी नहीं। और कहते जो ब्रह्म साधना करते हैं, जो देवी बता रही है और ये काल भी कह रहा है, वो चार प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, एक आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन लाभ के लिए वेदों के ही श्लोकों मंत्रों से धार्मिक अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि करते हैं, वो कोई और किसी शास्त्र के मंत्र जंतर का सहयोग नहीं करते। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा, इस तरह की आरतियां नहीं करते। वो केवल वेदों के मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा है नवम भूर्भुवस्वः, वैसे इस मंत्र के साथ ओम शब्द नहीं लगना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है और उसमें ओम शब्द नहीं लगा हुआ है, और उसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है, वो केवल एक महिमा बताई गई है, उसके पाठ से बार बार जाप करने से केवल ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है, और यज्ञ का फल ऐसा समझो जैसे रोगी को ग्लूकोज हो, ग्लूकोज अपना लाभ करती है लेकिन ट्रीटमेंट जो रोग काटने की दवाई वह न्यारी होती है, भिन्न है, वो ये मंत्र है जो दास आपको बताएगा। तो यहां प्रसंग चल रहा है कि ये क्या बताया है कि अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आर्त संकट निवारण करने के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही वो अपना जंतर मंत्र यानी कोई अनुष्ठान करते हैं। और जिज्ञासु वो होते हैं जो वेदों के मंत्रों को परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से घर से निकलते हैं और जैसे भी उनको गुरु संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वेदों के मंत्रों को कंठस्थ याद कर लेते हैं और आगे जाके वो वक्ता बन जाते हैं। वो भी तीनों ऊपर के ये तीनों योजलस बताए हैं। ब्रह्म के साधक अर्थार्थी आर्थ और ये जिज्ञासु कहते ये मुझे अच्छे नहीं लगते। और ज्ञानी जो चौथे प्रकार का ज्ञानी है, ज्ञानी आत्मा वो होती है जिसको ये पता लग गया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, मिलन बारंबार है। और जैसे तरवत से पत्ता टूट गया भाई फिर नहीं लगेगा डार, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किसका। योजलेस इस मानुष शरीर की मिट्टी हमारे किसे काम नहीं आओगी जब भक्ति नहीं की, परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया। तो फिर इन्होंने सोचा कि भगवान की भक्ति करनी है, मनुष्य जीवन मिला, वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा केवल एक परमात्मा की भक्ति करो, अन्य किसी की नहीं, ओनली वन, उस एक परमात्मा को जानो जो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो पाप नाशक है, सबका दुख निवारण करने वाला है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होगा। अब उन ज्ञानी आत्माओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा की चाह नहीं रही, उन्होंने वेदों को पढ़ा जैसा भी जिससे सुना, जैसे दुर्गा कह रही है गुणगान तो कर रही है परम अक्षर ब्रह्म के, और उसको कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, फिर कहती है ब्रह्म की साधना कर, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता रही है, ओम जाप, ओम मंत्र, ओम एक अक्षर, और कहती है वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। हाय हाय, पुण्यात्माओं यहां बिगड़ रही है सारी बात, भक्तों की कमी रही नहीं, जिन्होंने कई कई हजारों वर्षों तक अपना शरीर भी झोंक दिया भगवान के लिए, तपस्याएं की, कांटे हो गए सूख कर, दीमक चढ़ गई शरीर के ऊपर, बंबई बन गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस परमेश्वर की अमरवाणी यानी तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, जिसमें विस्तार से सब अनुष्ठान के यज्ञों के विषय में जानकारी है, वो किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उन तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम कर, विनम्र होकर उनसे प्रश्न कर, वो परमात्म तत्व को जानने वाले, तत्व ज्ञान को जानने वाले, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर की के बारे में जानकारी देंगे, फिर वो साधना कर। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को जन्म लेने वाला, कोई ना जन्म लेने वाला, कोई साकार कोई निराकार बताता है, इसका यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बताते, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि पवित्र चारों वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है। और इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 मंत्र 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो और अपना मूल कर्तव्य जानकर सुमन करो। तो उन ज्ञानी आत्माओं को जैसा भी अपने आप निष्कर्ष निकाला कि ओम नाम का जाप लिखा यजुर्वेद में, यजुर्वेद से मंत्र तो ले लिया ओम, और वो मान लिया पूर्ण परमात्मा का, उस एक सर्वशक्तिमान एक भगवान का, एकम एक, जो और परमात्मा नहीं है उसके तुल्य, वो मान लिया उसका और ओम नाम का जाप कर करने लगे। और फिर ये हठ योग कहां से ले लिया, ये घोर तप करना, ये किसी शास्त्र में नहीं है, जो घोर तप को तपते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, वो नरक के भागी है। ये तप कहां से लिया इन ऋषियों ने, जब ब्रह्मा जी की को कमल के फूल पर रजगुण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल ने कर दी अपने दोनों के मिलन से, तो उसके बाद इसको कोमा में रखा और जब ये बड़े हुए तीनों भगवान दुर्भा जी को कमल के फूल पर लेटा दिया, वहां इसको होश में ला दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं होश में आया तो मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था। फिर सब कुछ देखा इस कहीं और छोर पृथ्वी का मिला नहीं, तब मैंने सोचा भी मेरा के कर्तव्य है, इसे सब जगह जल ही जल है, मैं क्यों पैदा हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। कहते हैं ब्रह्मा जी के देवी पुराण में तीसरे स्कंद में 4-5 अध्याय में कहते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर क्या कहा, आकाशवाणी हुई अब सृष्टि करो। यही सवसम वेद में लिखा है परमात्मा की सचिदानंद की वाणी में, तपो तपो कर वाक्य सुनाया लोक रचो बल मेरी माया। उस काल ने तप 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 का वाक्य बोला और फिर जब तप कर गया जब कहा कि अब सृष्टि कर लोक रचो बल मेरी माया। अब वहां से तप ले लिया क्योंकि जब तक तो ब्रह्मा को वेद मिले भी नहीं थे। अब वो तपो तपो का वाक्य जो आकाशवाणी हुई वो काल ने करी ब्रह्म ने भ्रमित करने के लिए, तो इन देवताओं ने वो तपो शब्द तप का तो वहां से ले लिया कि भगवान उस काल की वाणी को परम पूर्ण परमात्मा की का आदेश मान लिया जबकि इस काल का आदेश था यो। उसके बाद ये चारों वेद मिले, वेदों में ओम मंत्र पाया तो इन सब ने यो खिचड़ी बना ली। ओम नाम ते ले लिया वेदों से पूर्ण ब्रह्म का जान के और तप ले सुन लिया ब्रह्मा जी से उस आकाशवाणी मान के पूर्ण परमात्मा, इन सब ने मिलकर फिर ये ओम नाम का जाप शुरू करने लगे बैठ के। ये कुछ देर तक जब मंत्र का हम जाप करेंगे इससे कुछ अंदर हमारे आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे हम पंप से हवा भरते हैं साइकिल की ट्यूब में तो धीरे धीरे वो उसमें शक्ति आनी होती शुरू हो जाती है, करड़ापन हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद उस ओम नाम के मंत्र से शरीर का ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्मी सर्दी भी कम लगने लग जाती है आध्यात्मिक शक्ति के कारण। फिर ये क्या करते हैं, अपने आप धीरे धीरे अंदर डटोलना शुरू करते हैं, फिर इनका किसी कोई कमल खुल जाता है, ओम नाम का जाप ये उच्चारण करके करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम व्यवहारण माम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहं सयाति प्रमाम गति। ये कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है उच्चारण करके सुमन करण का, तो ये उच्चारण करके सुमन करना शुरू करते हैं तो मूल कमल खुल जाता है ना, ये ब्रह्मा जी का कमल खुल जाता है जो स्वाद चक्र जिसे कहते हैं सेकंड नंबर नीचे से सेकंड नंबर का। तो इसमें से कोई भी एक कमल हमारे शरीर में चैनल बने हैं जैसे टीवी में चैनल होते हैं और जो सा भी चैनल ऑन हो गया यदि टीवी ठीक है और कनेक्टेड है पीछे से तो उसमें उस चैनल के कार्यक्रम आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी में फिल्म चल रही है कि तक कोई झरना बह रहा है कि तक कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो आदमी देखता देखता उसमें काफी समय निकल जाता है। तो ऐसे ही ऋषियों ने साधनाएं की पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति जानकर और कर ली काल की भक्ति ब्रह्म की। तो ऐसे ही समाधिस्त हुए, इनको अंदर की झलक आने लगी और अंदर टेलीविजन की तरह बहुत सुंदर दृश्य आने शुरू हो जाते हैं जो समाधि लगाती है। वैसे समाधि में 10 मिनट भी ना बैठा आदमी बजाय अंदर कुछ ना दिखे तो इसने कौन रेड हो मतलब अंदर इस शरीर में पूरे ब्रह्मांड के जहां जहां भी जिस कमल का संबंध है उसके इस कमल के अंदर इस हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ जो बने हुए कमल है इनमें ऊपर के पूरे दृश्य टीवी की तरह एक स्थान पर आप देख सकते हैं। तो ये ऋषि लोग ऐसे देखने शुरू कर दिए ना, आप बिना पता कौन से कमल में कहां घूम रहा हूं मैं, तो वो ऊपर के नजारे किधर डांस हो रहे हैं किधर बाजे बाज रहे हैं ऊपर के लोगों के और किधर झरने बह रहे हैं किधर कुछ हो रहा है किधर कुछ हो रहा है, उनको देख देख कर ये काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं। और ऐसी अभ्यास ऐसी आदत बन जाती है, जो ही वो बाहर समाधि टूट जाती है तो बाहर का दृश्य उसको अच्छा नहीं लगता, फिर बाज के फिर अंदर देखते हैं अब देखूंगा ऊपर क्या है, और वो देख रहे हैं फिल्म और बैठने से तप बन गया। अब उस फिल्म को देखने के लिए जो बैठे रहे 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष, उससे तप बन गया और सिद्धियां आ गई इन मंत्र से, ये प्रभु पाक गए। जो बैटरी चार्ज कर ली 5, 10, 20, 50 वर्ष बैठ कर जो साधना की, उससे तप बन गया और तप के साथ साथ जो मंत्र जाप करते थे उससे सिद्धियां आ गई। और फिर भगवान तो मिला नहीं, क्योंकि इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। अब जैसे भी कोई साधक साधना कर रहा है, किसी को तो ब्रह्मा रूप में भी दर्शन दे देता है समाधि में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो वो साधक जिसने शिव रूप में साथ दर्शन दिए हैं काल ने ब्रह्म ने उस ओम नाम के जापते हैं, तो वो मान लेता है कि शिव जी जो है ना, ये तमोगुण शिव, ये ही पूर्ण परमात्मा है। और जिसको इसने दिए विष्णु रूप में दर्शन, तो वो मान लेते हैं ये विष्णु जी ही परमात्मा है, ये छुपा रहे हैं अपने आप को। अब तक यो ऐसे या रोल गदोल हो रही थी इस ज्ञान की, अब ये कति क्लियर हो जाएगा आपके समक्ष। अब परमेश्वर कबीर देव की वाणी, नौमन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना तो जी बार। सतगुरु तत्वदर्शी संत वो कबीर परमात्मा आए थे, वो सुलझा कर दरक गए थे उस सूत को, लेकिन हम बालक है हमने फिर उलझा लिया। अब परमात्मा ने उसको सुलझाने की विधि लिख रखी थी इस दास को, फिर वो टेक्निक दे दी जिससे ये नौमन सूत अर्थात इतना जबरदस्त अज्ञान बना रखा था इस काल के दूतों ने, नकली ऋषि महर्षि इन गुरुओं ने, अब वो एक मिनट में इस असुलझ गया। इस कलयुग में तो उलझ जाए कोई ना ये भी ज्ञान, जब तक ये भक्ति चाहोगे संसार दुनिया, आगे भक्तिहीन हो जाएंगे वो कुएं में पड़ो, वो बात अलग है। अब देखिएगा, पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के आगे के 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22, 23 आपने पढ़ लिया। अब बीच में ऐसे चैप्टर अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग स्थिति का ज्ञान है। अब देखिएगा ये जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है, प्रकाशक एवं मुद्रक गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखिएगा 16। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यानी अच्छी साधना, जो जहां से सही साधना शुरू होती है, शास्त्र अनुकूल साधना शुरू होती है, उसमें करने वाले अर्थार्थी, आरथ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, मुझको भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं करते। 17 में कहा है कि उनमें नित मुझ में एक ही भाव से सतीत अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे बहुत पसंद है, अति उत्तम है, इन चारों में यो श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे क्लियर बात कहता है कि जो मेरे से नीचे के जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, और जो सुकृत अच्छे कर्म या शास्त्रानुकूल साधना कहां से प्रारंभ होती है, मुझसे प्रारंभ होती है, जो मुझे इष्ट मानकर पूजते हैं, तो उसमें चार प्रकार के हैं, वो तीन प्रकार के रिजेक्ट कर दिए, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी जिज्ञासु। कहते ज्ञानी मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं पसंद, मैं मेरे लिए उत्तम है, मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है। अब उन ज्ञानियों को भी बताते हैं कि वो भी उस पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से, तत्वदर्शी संत न मिलने से, मेरे वाली अनुतम घटिया स्थिति में ही आश्रित रहे। ओए देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 17 आपने पढ़ लिया, 18 पढ़ो। अब उद्दारा, उद्दारा माने उद्दार हैं, नेक हैं, कौन? सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे मत में, मेरे विचार से ये ज्ञानी आत्मा, जिनके विषय में सत्रहवें श्लोक में कहा है ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझको प्रिय है, ये हैं तो अच्छी उदार आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, परंतु तू, परंतु आस्थित है सह ही युक्त आत्मा, माम एवं अनुतमाम गतिम। ओह हो, वो उद्धार तो है, बेचारी भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही है, सिद्ध लड़कीबाजी ला रखी है, लेकिन वो परमात्मा की भक्ति में लीन जो अच्छी आत्मा है, वो मेरे वाली अनुतमा माने घटिया, अश्रेष्ठ गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुतम गति लाभ को में ही आस्थित है। अनुतम, इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर रखा है, अरे तेरा गजब भैया, अनुतमाम अति उत्तम, यहां देखिए ये सभी उद्धार हैं, एते सर्वे एव, ये सभी उद्धार हैं, कौन? ज्ञानी तू, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, तेरा कैसे घुमा दिया, ये मेरा मत है, मेरा मत है, क्योंकि वह मत, वह मद तत् मन बुद्धि वाला भक्त अति उत्तम अनुत्मा माने, ये युक्त आत्मा माने जो भगवान में लगा हुआ भक्त है, ये अनुत्मा माने अति उत्तम कर दिया, अनुत्तम माने घटिया हुआ, घटिया अनुत्तम, और गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अभी से कि 24 में और लिखा है इसी का अनुत्तम कारक, देखिए ये 24 में ये कहता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरी अनुतमम, अनुतमम, अनुतम, अनुतम माने अनुतम, यहां तो अनुतम लिख दिया और यहां अति उत्तम कर दिया, अनुतमम माने अति उत्तम। अब ये दास बताएगा आपको इसका रहस्य, क्यों अनुतम क्यों लिखा। अब यहां क्या बताते हैं ये उड़ जाने वाले, कहां फंसाते हैं इस अड़ंगे ने, अपने ज्ञान अड़ंगे को कहां उड़ जाएंगे जो आपको भ्रमित करते हैं। कहते हैं समास के अंदर अनुतम का अर्थ होता है जिसके, जिससे अच्छा कोई और ना हो, रत्रा गजब हो। अब जैसे उत्तीर्ण क्या होता है, उत्तीर्ण सफल पास, और अनुत्तीर्ण असफल फेल। यदि अनुतीर्ण को ये मान के चल ले बालक जो फेल हो गया है, कहता फिरे कि मैं तो सबसे पास हूं, मेरे बराबर कोई पास नहीं, अनुतम अनुतीर्ण। अब कहता रहे उसके कहने से कि वो पास हो जाओगा, वो तो अनुतीर्ण शब्द से जकड़ा जा चुका है। ऐसे ही अनुतम, अब मान लीजिए हम ये सोचकर चले कि यहां, क्योंकि यदि हम उनकी बात को ऊपर रखें कि अनुतम का अर्थ यहां ये माने कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में किसी और बहुत सी जगह है जहां पर गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा की साधना करने को कहता है। 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से अनन्य मन से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। शाश्वत माने अजर अमर, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्यलोक है। ब्रह्मलोक भी नाशवान है, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी उनकी विभा नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, और मेरे कर्म, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, न तो ऋषिजन जानते न ये देवता, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल से उत्पन्न हुए हैं दुर्गा के संयोग से, और आगे फिर इन्हीं की संतान है ये जितनी संसार सृष्टि है। तो पिता की जन्म को, पिता की इस उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती। दादाजी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, उनका सारा विवरण बता देंगे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो हम सबका पिता है, परम पिता है, उन्होंने आकर के ये सारी हिस्ट्री बताई, बता रखी है पहले अपनी उस सचिदानंद गण की वाणी में, अपने कबीर वाणी में वह पहले लिख रहा कि भगवान ने जो आज सब सदगण समर्थन दे रहे हैं उसको। तो पुण्यात्माओं, यदि हम यहां ये मानकर चले, इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा इस गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होती है, और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं होता। और ये खुद कहता है कोई और परमात्मा है, उसकी साधना करने से फिर उसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता। अब आइए फिर एक बार पहले इस अनुतम गति क्यों कही, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब ये ज्ञानी आत्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और जय हाथ से छूट गया या बात बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने वेदों के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं छेड़ा, वेदों को पढ़ा, वेदों से निष्कर्ष निकाला कि इसमें ओम नाम का जाप है, और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना, ओम नाम का जाप, उन्होंने पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और उधर से ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी जो काल की हुई थी तप करो, वो तप करने का आदेश भी साथ जोड़ दिया। एक छोटा सा 17वें अध्याय का 5वां श्लोक और दिखा देता हूं आपको, उसमें क्या लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो घोर तप को तपते हैं, अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 5। अब चार तत्वापन पढ़ ही लिया था, जो सात्विक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, अच्छी आत्मा जो हैं अच्छे स्वभाव के, वो अन्य उपासना तो कर रहे हैं, वो डले तो ढो रहे हैं, लेकिन वो देवताओं तक की पूजा करते हैं। आगे देखो 5वें में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित अशास्त्र विहितम केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल से अभिमान से युक्त हैं। 6वें में कहा कि वो शरीर रूप से सतीत भूत समुदायों को और अंतःकरण में सतीत मुझको भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। ओहो, और तोड़ पाड़ दिया कि जो घोर तप को तपते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का ही ये वर्णन बताया जा रहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है और उसको घोर तप को तपते हैं, वो अभिमान, वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इस सब परमात्माओं सारे प्राणियों का जो मालिक है वो भी हमारे शरीर में जीव आत्मा के साथ उनकी शक्ति अभेद रूप में, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की है, या आत्मा जैसे जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, जैसे गाय ने अपना बच्चे अपने गऊ गाय को अपने बच्चे की नजर रहती है, चारा भी चर रही है और ध्यान अपने बच्चे पर है, यदि उसको कोई खतरा है, कोई कुत्ता वगैरह उसके निकट आ जाता है उसके बच्चे के, तो फू फू करती है और चारा भी चर रही होती है। तो ऐसे हम परमपिता कबीर जी के बच्चे हैं, हमारे हम जब आत्मा जो है हमारे अंतःकरण हृदय में रहती है, तो इसके ऊपर जब हम घोर तप को तपते हैं, यो काल करवावे सारे उल्टे काम, शरीर को तंग करवाता है ताकि जीव को दुख हो, तो घोर तप को तपते हैं तो आत्मा को पीड़ा होती है, तो परमात्मा भी दुखी होता है कि देख कितना कष्ट दे रखा है मेरी प्यारी आत्मा को। तो इसमें लिखा है कि वो जो मैं भी दुखी होता हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और वो पूर्ण परमात्मा भी सबका मालिक भी वो दुखी होता है जो इस घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट आत्मा समझ लेना, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए। अब फिर आइए उसी कंसेप्ट पे, उसी विषय पर आते हैं कि जैसे ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी आत्मा है, भगवान के लिए शीश रख दिया, लेकिन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, इस कारण से इन्होंने भी डले डो लिए। एक ज्ञानी आत्मा, एक चुनक ऋषि था, उसने इसी विधान अनुसार के परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस मनुष्य शरीर से, चाहे उस शरीर रहे या ना रहे, और परमात्मा अपने सोसम वेद की वाणी में कहते हैं कि सिर साटे की भक्तिया भाई और कछु नहीं बात, और सिर के सौदे पाई है वो अवगत अलखनाथ। अब इस माटी ने एक दिन मिट्टी में मिलना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो जावेगी। और इस मिट्टी से अगर भगवान मिल गया तो सोना उग गया इसमें, तो हमने इस पांच तत्व की मिट्टी से सोना उगाना है। और जिन भांग बोली अन उपासना करके वह भांग बेच रहे हैं अपने आप भी नरक में, और जिसने प्याव वह भी ब्रांड मिट्टी उनकी। तो हमने इसमें वह कणक बीजनी है जो जीवन दाता है, यानी सत्य साधना रूपी कणक बीजनी है जो हमें भी सुख दे और भी कोई ले जाएगा उसका भी जीवन निर्वाह अच्छा होगा। एक तुणक नाम के ऋषि थे, परमात्मा उन्होंने वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, फिर सबने निष्कर्ष निकाल रखा है कि ओम मंत्र जो है ये पूर्ण परमात्मा का है, जबकि ये ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, यह एक ओम अक्षर है, इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम समय यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। और उस परमात्मा की भक्ति साधना गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में जिक्र किया प्रभु, वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 6वें अध्याय में श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये नियम है कि जो जिसकी साधना करता हुआ अंत समय तक जिसमें भावित रहता है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता अंत में उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरी साधना मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस सचिदानंद घन परमात्मा की जो साधना करता है और अंतिम समय तक उसी की साधना करता हुआ भक्ति की शक्ति से उसकी साधना से वो उस परमात्मा को प्राप्त करता है। थोड़ा सा 2 मिनट इन श्लोकों को फिर देखिए। श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 देखेंगे हम। पहला जरामरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु, ये तत् ब्रह्म कहो चे ब्रह्म तत् कहो, ये संस्कृत उल्टी सुट्टी चल रहा है। ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, यानी इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएंगे, तत्वदर्शी संत के पास जाकर ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, तो वो जरा मरण मोक्ष, जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से ही बचने की चेष्टा करते हैं। और वो कौन है? वो तत्ब्रह्म विदु, उस परमात्मा को जानते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझते हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। यहां देखें, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष तत्ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। सातवें में केवल 30 श्लोक हैं, ये 30वां यहां समाप्त हो जाता है, 8वां प्रारंभ हो गया। अथ 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म, क्योंकि ये अध्यात्म का इसमें जिक्र किया है 30वें में, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित और अधियज सहित सबका आत्म रूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। तो यहां पूछा है प्रथम में कि किम तत्ब्रह्म, 8वें के प्रथम में किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम की मुच्यते। उत्तर दिया है इसका, हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तेरे से न्यारा वो परमात्मा और कौन है। तीसरे में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है। अच्छा, ये 5वें में क्या कहा है 8वें अध्याय का, पांचवें में कहा है कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही श्रवण करता श्री त्याग कर जाता है वह मेरे, वैसे तो ये लिखा साक्षात रूप को नहीं, वह मेरे भाव में भावित होता, मद भावम याति, वह मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे भाव में भावित रहता है, उसमें कोई संशय नहीं। और छठे में इससे लिंक है, छठे में क्या कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंतकाल में जिस भी भाव को श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह उस उसी को ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। अब सातवें में कहा है कि इसलिए तू मेरे में भाव कर लगेगा तो मेरी भक्ति कर, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार अर्पण किए हुए मन मुझे युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। इब आठवें में कमाल कर दिया। अब देखो सातवें में क्या, आठवें में देखा, तेरहवें में, आठवें अध्याय नंबर आठ का और श्लोक नंबर तेरह, जो दास आपको कंसेप्ट करना चाहता है वो देखिएगा। तेरह में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है, और माम अनुसमरण जो मेरे माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गति, इसका यहां से शुरू होता है, ये इकट्ठा कर रखा है उन्होंने बारह और तेरह, तेरह यहां से शुरू है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, व्याहरण उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ श्री त्याग कर जाता हुआ वह परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां तो इसने बता दिया कि मेरा श्रवण कर मुझे प्राप्त होगा, और मेरा मंत्र ओम एक अक्षर ओम है, ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है, एक अक्षर रूप ब्रह्म नहीं है, ये एक अक्षर ओम को ही एक अक्षर बोलते हैं। यहां देखिएगा ये पवित्र गीता जी इसका इसको क्लियर करती है, श्रीमद् भगवत श्री भागवत पुराण, इसका ये एक अक्षर का अर्थ है, जो ओम है इसी को एक अक्षर बोलते हैं, और उस परमात्मा के आठवें अध्याय के आठवें में आते हैं, आठवें अध्याय के आठ नौ दस को अब फिर समझते हैं। सातवें तक तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर मेरा एक ओम मंत्र है, और उस अन्य कोई परमात्मा है ये देखिएगा। अब आठवें अध्याय का ये सातवें तक तो इसने कह दिया कि मेरी भक्ति कर, इसलिए सब समय में मेरा श्रवण कर मुझसे और युद्ध भी कर, इस प्रकार निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आठवें में कहा है हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन अभ्यास यानी कोई और परमात्मा है, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश परम दिव्य पुरुष परमेश्वर, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर, ये प्रकाश रूप ही अपने क्योंकि न जितना ज्ञान है वह थोड़ी गे लड़ा रखी है, परम दिव्य पुरुष परमम दिव्यम पुरुषम परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, कोई इससे अलग भगवान है। नौ में कहा है ये कवियम लिखा, कवियम जो पुरुष, इन्होंने हम इन्हीं की थ्योरी पढ़ते हैं पहले, सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका नियंत्रक सबका मालिक है, वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके सबका धारण पोषण करने वाला अत्यंत अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, सचिदानंद घन यानी गीता ज्ञान दाता से और है। अब दसवें में, आठवें के दसवें श्लोक में, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब वो सचिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होता है जो उसकी साधना करता है। उसकी साधना क्या है? सत्र में जाएगी तेईसवें श्लोक में ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा ओम तत्सत यह ऐसा यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अब गीता ज्ञान दाता ने अपना मंत्र तो बता ही रखा है, उसने अपना मंत्र तो बता ही रखा है कि मेरा तो ये ओम एक ब्रह्म है, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके जाप करने का, उससे मुझी प्राप्त मेरी प्राप्ति होती है, नथिंग एल्स। ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र ग्रंथ गीता जी में या वेदों में जाप करने का नहीं है, कोई नहीं है। इससे ओम नाम तो है ब्रह्म का, और ओम तत् सत ये ओम तो ब्रह्म का और तत् और सत ये दो सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताओगा। ओम और तत् शब्द मिलकर ये सतनाम बन जाता दो अक्षर का, और तीसरा जो सत है वो और तीसरा बाद में दिया जाता वो सार नाम है। इन तीनों मंत्रों से ओम तत् सच्चे ओम तत् सत नाम जो है पूर्ण परमात्मा का है। अब कहते हैं उसकी भक्ति करता है तो उसके पास जाता है उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप की कमाई से, और मेरा जो ओम नाम का जाप करता है मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब इस काल वाली गति ब्रह्म वाली गति पर विवेचन करते हैं। अब हम फिर अपने उसी कंसेप्ट पर आते हैं, उसी विषय पर आते हैं कि सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा जिनको पता लगा कि भगवान की भक्ति नहीं की इस मनुष्य शरीर से तो ये व्यर्थ है, और परमात्मा की भक्ति केवल एक भगवान की भक्ति करनी है जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, जो सबका मालिक है मोक्षदायक है, और किसी की भक्ति वो करने भक्ति करने योग्य नहीं है। तो उस उन्होंने क्या किया कि ओ मंत्र का जाप वेदों से जैसा भी किसी से सुना या आप जाना, और तप करने का वो तप का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी से वो खिचड़ी ज्ञान बना लिया। एक चुणक नाम के ऋषि थे, उन्होंने विचार किया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, उन्होंने उसी आधार से उस लोक वेद के आधार से इस ब्रह्म को संपूर्ण परमात्मा मान रखा था। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जो जनसाधारण की थ्योरी होती है उसको लोक वेद बोलते हैं, जो सद ग्रंथों में वर्णित ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि उसने चणुक ऋषि जी ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और मेडिटेशन वो हठ योग तप किया। अब इस ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कति क्लियर किया है गीता ज्ञान दाता काल ने। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता मैं काल हूं, पुण्यात्मा श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने ना पहले कभी काल कहा अपने आप को ना बाद में कभी काल कहा, वो तो एक सतोगुण भगवान थे, बहुत अच्छी आत्मा के प्रभु थे। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह यू काल बोल रहा था गीता के ज्ञान को। इसने कहा 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं, और मेरे इस ज्ञान के मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति ना तो किसी को पहले हुई ना आगे हो सकती, ये मैंने तेरे पर कृपा करके दिखाई है, ये ना किसी वेदों वर्णित विधि से ना किसी यज्ञ से ना जप से ना तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, इति सिद्धम की वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। अब इन ज्ञानी पुरुषों ने विद्वान पुरुषों ने परमात्मा की चाहने वाली अच्छी आत्माओं ने उद्धार आत्माओं ने परमात्मा पाने के लिए ये डड़े डोए ओम नाम का जाप और ये तप किया। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना तो कर ही रहे हैं यान उपासनाएं जो करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी भी जो है वो घोर तप को तपते हैं, और शरीर के अंदर जो मैं यानी पूर्ण परमात्मा और ये काल, क्योंकि इन कमलों में ये भी रहता है, सहस्रार कमल में, ये घोर तप को तपते हैं, ये मुझे भी दुखी करते हैं, और अंतःकरण में विराजमान वो पूर्ण परमात्मा जो जीवात्मा का के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसको देखकर कहते हैं संत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख हो, उसको भी दुखी करते हैं वो राक्षस स्वभाव को जान, राक्षस स्वभाव के असुर स्वभाव के जान। अब इन इनको भी असुर स्वभाव में गिन दिया जो ब्रह्म तक की साधना करते हैं, ब्रह्म तक की मीन जो हठ योग करते हैं। अब चुनक ऋषि थे, उन्होंने वेदों से तो ले लिया ओम मंत्र और हठ योग ले लिया ब्रह्मा जी की सुनी सुनाई आकाशवाणी इस काल की, वो तप किया और साथ में किया योग ओम जाप, तो परमात्मा तो मिला नहीं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ऐसे साधक के वचन में शक्ति आ जाती है और किसी को कह देता है तेरी टांग टूटेगी, वह टांग टूट जाती है, किसी को कहता है तेरा बच्चा मरेगा, क्योंकि उसको कुछ उसके अंदर से जितनी रेंज होती है उतनी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसमें भविष्य में होने वाले कुछ उसके कर्म वो बता सकता है, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी फिल्म बनी हुई हमारे अंदर डिपॉजिट है जो तेरे साथ जो भी तेरी जीव के साथ। तो लोग अन्य प्राणी उनको समझ लेते हैं यो महात्मा के तो चाड़ा पड़ा है, तो भगवान ने पड़ा है, देखो भविष्य की बता दी, और किसी को बद्दुआ दे देता हुआ भी फल जाती है, क्योंकि उसने जो बैटरी चार्ज की थी अब उसने वो डिस्चार्ज करने पर ला दिया काल ने, काल ने भ्रमित रखे हुए सब प्राणियों को। अब चुनक ऋषि जैसे ऐसे कई चमत्कार हो गए तो और दूसरे साधक संत ऋषि और आसपास के ग्रामीण लोग उसके उसको देवता मान के भगवान मान के उसकी उसके गुणगान लगे हुए, चुनक जैसा सिद्ध पुरुष हमने नहीं देखा, चुनक ऋषि जैसा। अब चुनक ऋषि को अहंकार हो गया, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5-6 में स्पष्ट लिखा कि वह अहंकार से युक्त हो जाते हैं वो लोग है। अब उसमें अभिमान हो गया कि मैं तो मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे वचन में ये शक्ति, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, चक्रवर्ती मीन पूरे पृथ्वी पर जिसका शासन हो, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। और वो चक्रवर्ती राजा क्या करता है, कुछ समय के उपरांत एक वर्ष में, दो वर्ष में, चार वर्ष में, एक अपना घोड़ा छोड़ देता है जिस पर वो स्वयं सवारी करता, जो राजा का घोड़ा होता स्पेशल, और उसके गले में एक पोस्टर चिपका दिया जाता है, पट्टी बांध के पट्टी लटका दी जाती है, उस पर लिखा होता है कि जिस नरेश ने, जिस छोटे राजा ने चक्रवर्ती राजा की अधीनता स्वीकार नहीं है, वो युद्ध के इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और राजा के पास उसमें लिख दी जाती है बेहतर अक्षौणी सेना है, ऐसा लिखा हुआ। वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूम कर वापस आ गया, किसी की नहीं पकड़ा किसी ने, सबने चक्रवर्ती राजा मानदाता की प्राधीनता स्वीकार कर ली। अब जो घोड़ा और सैनिक गए थे वहां से, कहां से, जहां चुनक ऋषि की कुटिया थी, राजा उस ऋषि ने जाते समय भी देखा उस लापड़दे को, एक घोड़ा हजारों सैनिक साथ में थे, वापस आए तब देखा तो ऋषि ने पूछा भाई सैनिक को, ये घोड़ा बगैर सवारी किसी पर इस पर कोई बैठा नहीं है, ये क्या कारण है? तो उन सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इस पर कोई बैठ नहीं सकता। उन्होंने अपना सारा कारण बताया कि हम ऐसे ऐसे इसको छोड़ा हुआ है, कोई राजा कोई इसको पकड़ लेगा तो उसने उस राजा के अन्य किसी राजा ने चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है तो इसको पकड़े और पकड़ लेगा तो राजा उससे युद्ध करता है और उसको अपना पराधीन बना लेता है। तो चुनक ऋषि ने पूछा कि भाई इस घोड़े को पूरी पृथ्वी पर किसी ने नहीं पकड़ा, एक ये सैनिक सिपाही एक आधा नकमी आत्मा होया कर सारे तो नहीं, वो अहंकार वत्स बोला कि किसकी मां ने दूध पाया जो हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ दिया, जाड़ फोड़ दिया, दांत निकाल दें उसके। अब उधर से चुनक ऋषि भी अंडी पा क्या बैठा था भाई, कहने लगा अच्छा। अब चुनक ऋषि ने सोचा कि इस राजा और सैनिकों को अभिमान है, लाइन की मरोड़ काट दू, इस उद्देश्य से क्या इनकी जो ना ठीक सीधा कर दूं इस राजा को। चुनक ऋषि बोला भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लूं और तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लो तो क्या हो। वो सैनिक बोले फिर क्या हो, फिर तेरा जूत मारा पकड़ कर देख। वो बोला भाई मैंने इस राजा का घोड़ा पकड़ लिया, युद्ध ओट लिया, युद्ध स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। एक सैनिक बोला रे कंगाल तेरे दाने तो खाणना नहीं, और युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। पडलेस पर क्या लिखा, बेहतर सोनी सेना है हमारे राजा की। अब ऋषि बोला भाई यो काम मेरा है तुम्हारा नहीं, मैंने युद्ध ओट लिया घोड़ा बांध दिया। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने घोड़ा बांध दिया ऋषि की उसी कुटिया के पेड़ के जिस पर चौफड़ी डाल रहा था, और जाकर राजा को कह दिया कि राजन आपका घोड़ा एक चुनक नाम के कंगाल ऋषि ने पकड़ दिया। राजन कल न कोई और पकड़ेगा, कल न किसी का और मुंह ऊपर न होगा, ये तो बात बिगड़ेगी। राजा बोला भाई ठीक है उसने संवार दो, अब जाओ उसने घट दो, फिर ले जाओ सेना। अब क्या किया कि उस राजा ने बेहतर अक्षोणी सेना की, बेहतर करोड़ सेना की चार टुकड़ी बना दी, 18-18 करोड़ की एक प्लाटून भेज दी 18 करोड़ का बनाकर एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक खोफ पैदा करने के लिए कि और भी कोई देखेगा तो इतनी सेना ने देखकर कलेजा हिल जाएगा सबका। उधर से उस चणक चुणक ऋषि ने जो काल उपासक था, ब्रह्म साधक था, उसने जो इतने हजारों वर्ष डले डोए व साधना की काल की, उससे चार एटम बम बना लिए, चार पुतली बना दी, संत भाषा में उसे पुतली बोलते हैं, चार परमाणु बम बना दिए, और एक टुकड़ी 18 करोड़ की संत को मारने आई ऋषि को तो एक पुतली छोड़ दी, उसमें से करोड़ों पुतली होगी, उसके टुकड़े सबको कत्लेआम कर दिया, यानी ऐसे छर्रे छूट गए, 18 करोड़ सेना मरगी। अब राजा ने दूसरी 18 करोड़ भेजी तो ऋषि ने दूसरी पुतली से उसका नाश कर दिया। कहने का भाव ये है कि चार पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर डाला। ओए होए ए परमात्मा, यहां सवसम वेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में कहा कि उसके अंदर विशेष विस्तृत ज्ञान है, वो साधना करने की है, कुछ नहीं कुछ ठीक, कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है, ये विस्तृत ज्ञान उस तत्व ज्ञान में है। उसमें क्या बताया है, 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनकरी शिशुवर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ओहो के 72 अक्षौणी सेना अक्षय करी, ओहो 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया चुनक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ऋषि के ये काम है जो काल उपासक है। रे तेरा गजब। अब ऋषि ने पंगा पान की के जरूरत थी, भाई राजा का काम अपना, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, यदि उसने कोई दुखी करता हो आके छेड़छाड़ करते हो, जब भी रोआ पीटी कर ले, किसी ने धमका खुड़का देगा या झटका दे दे, बेमतलब पंगा लेना को साधु संत फकीरों का काम होता है, ऋषियों का काम है। चुनक ऋषि ने पंगा मोल ले लिया। अब क्या किया, क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, ऋषियों में भी श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना खा ली, और ये देह धारे मौत फिर ये सभी काल के वेग। हम तो ऋषि मानने, ये तो नोके एटम बम है, ये तो चलती फिरती मौत फिरन लग रही है, काल के भेख, ये काल के साधक साधु ये ऋषि, ये तो कहे मनुष्य रूप में मौत फिर ही न, इन तो बचकर है दूर टल जैसी बीमारी, तो ये ऋषि हम इनको ऋषि मान रहे थे। अब सुनो इस चुनक ऋषि का क्या होगा, ये निर्णय है, ये तत्व ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं जीवन सा, चाहे तो कोई तलवार तय कर दे, चाहे अपना वचन तय कर दे, जो हत्या होगी वह हत्या है, उसका पाप है। अब ऋषि चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना मार दी, वो उसके बैड अकाउंट में लिखा गया, और जो उसने ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया वो उसकी साधना वाले अकाउंट में लिखा गया। अब तप का प्रतिफल क्या मिलेगा, ये राजा बनेगा कभी किसी युग में, और इतना ही जबरदस्त राजा होगा क्यों कितने वर्षों तक राज करेगा। राज जब तक इसके क्रम में है, भाग्य में है, वो करेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और तब तक ये और नरे खोटे खोद देगा, क्योंकि इसका आगे बोलनिया कोई नहीं। ये इतनी दुर्गति हो इस जीव की इस अध्यात्म ज्ञान मिला। और फिर जो ओम नाम का जाप किया, इससे ये ब्रह्मलोक में जाओगा। इसकी कमाई था, ब्रह्मलोक में रह करके फिर ये पृथ्वी में फेर आवेगा, फिर ये कुत्ता बनेगा। और कुत्ता बनकर इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जो वह त्रिकोण सेना मारी थी वो अपना बदला देगा। और फिर वो 72 करोड़ सेना जो इसने मारी थी वो चुन चुन का अपना बदला लेंगे। इसलिए लिखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ है, और ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहे। क्यों? क्योंकि अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट किया है, कहते बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना तक बुद्धि जाती है और उसकी याद रुकति होती है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से पूर्ण लाभ है, ना परब्रह्म पूजा से लाभ है, केवल उस वासुदेव, वासुदेव का अर्थ है सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है, सबका मालिक है, जो कुल मालिक है, जो अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, वही सर्वम, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पापनाशक है, वही मोक्षदायक है। ये बताने वाला संत तो तुम्हें मुश्किल से मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, वो ये दास आपके पास परमात्मा ने भेज दिया, अब इसका लाभ उठाओ और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।